गुस्से में दीवा ने आर्यांश को थप्पड़ मार दिया था। उसने आर्यांश पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर कर दी है, तो आर्यांश ने भी गुस्से में यही कहा कि वो उसे नर्क का एहसास दिलाएगा। साथ ही आर्यांश ने ये भी कहा कि अगर वो आज रात उसकी सारी बातें मानेगी तो अगली सुबह वो उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर देगा। दीवा ने आर्यांश की बात मान ली थी। आर्यांश दीवा को एक कसिनो ले गया जिसकी रेप्यूटेशन काफ़ी ख़राब थी। आर्यांश ने उसे एक कमरे में तीन आदमियों के बीच छोड़ दिया था। हालांकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्यांश वहीं पर था, लेकिन उसने यही जाहिर किया कि आज की रात दीवा को उन तीनों आदमियों के साथ बितानी होगी। लेकिन दीवा को ये कभी मंजूर नहीं था, इससे बेहतर वो मरना पसंद करती। दीवा ने अचानक वहां रखी खाली शराब की बोतल को तोड़ा तो वो सब हंसने लगे। आर्यांश के चेहरे पर भी सार्कास्टिक स्माइल आ गई। एक पल के लिए उन सबको लगा कि दीवा उस बोतल से खुद की रक्षा करेगी, लेकिन तभी अचानक आर्यांश की आंखें डर से फैल गई थीं। अचानक ही दीवा ने अपने लेफ्ट हैंड की नस को काट लिया था। दीवा नीचे गिर गई, उसके मुंह तक से खून आने लगा था। आर्यांश तो वहां पर सदमे से जम ही गया था। तभी उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाकर बोला, तब आर्यांश को होश आया। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, ये इस लड़की ने क्या किया? आर्यांश जल्दी से दौड़कर दीवा के पास आने लगा। वो उसके पास पहुंचता उससे पहले दीवा ने एक और कट लगाते हुए उसे घाव को गहरा कर लिया था। दीवा एक डॉक्टर थी और जानती थी कौन सी नस को किस हिसाब से काटा जाता है कि इंसान की जान चली जाए। आज आर्यांश के चेहरे पर दर्द के हजारों भाव एक साथ उभर आए थे। वो घुटनों के बल बैठा और दीवा को संभालने लगा। वो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, दीवा पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो तुम? आर्यांश तो बस दीवा को वहां सबक सिखाने के लिए लाया था। इस वक्त उसके मन में यही चल रहा था कि दीवा ने ये सोच भी कैसे लिया कि वो अपनी आंखों के सामने दीवा के साथ कुछ भी गलत होने देगा। दीवा ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, आर्यांश, अगर मैं मर जाऊं तो प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ देना। और तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? आर्यांश बेहद दर्द भरी आवाज में बोला और उसने दीवा को अपनी बाहों में उठा लिया था। आर्यांश ने दीवा से बस यही चाहा था कि वो सॉरी बोलकर उसे मदद के लिए बुलाए, लेकिन यहां तो दीवा ने बेवकूफी करते हुए खुद की जान लेने की कोशिश की थी। दीवा आर्यांश की बाहों में थी, उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी, मानो वो खुशी से मौत को गले लगाने जा रही थी। उसका चेहरा देखकर आर्यांश को और भी तकलीफ हो रही थी। दीवा का हाथ नीचे की तरफ लटका हुआ था और उससे खून बह जा रहा था। दीवा को बेहोश होने से बचाने के लिए आर्यांश ने तेज आवाज में कहा, ये जो तुमने आज बेवकूफी की है ना, उसकी सजा तुम्हारी फैमिली को भुगतनी पड़ेगी। बेवकूफ लड़की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे मरने के बाद भी मैं उनके नाक में दम करके रखूंगा। तुम एक शैतान हो आर्यांश कपूर, दीवा ने बेहद धीमी आवाज में कहा और फिर बेहोश हो गई थी। उसका चेहरा बेजान होने लगा था। गाड़ी के अंदर जाकर आर्यांश ने उसके हाथ को बांधा और तुरंत उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल लेकर गया। दीवा अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी। वो जानता था कि दीवा की ये हरकत उसकी जान ले सकती है। इस वक्त वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि दीवा ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं आर्यांश इन सब का जिम्मेदार खुद को बता रहा था। सब मेरी गलती है, मुझे अच्छे से पता था कि तुम्हारे और समय के बीच कुछ नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें उकसाया और फिर तुम्हारे ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए। कोई भी लड़की ये सहन नहीं कर सकती। तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बस वहीं से मेरा आपा मेरा बस के बाहर हो गया। प्लीज़ ठीक हो जाओ, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आर्यांश वहां चहलकदमी करते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने सामने की तरफ देखा तो सार्थक दौड़कर वहीं आ रहा था। सार्थक जल्दी से आर्यांश के सामने आया और बोला, मिस गोयनका, आप कैसी हैं? बोलते हुए उसने नज़र आर्यांश की शर्ट पर गई जहां पर खून के धब्बे बन गए थे। सार्थक ने एक नज़र आर्यांश के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत टूटा हुआ और थका हुआ लग रहा था। ये दूसरी बार था जब सार्थक ने आर्यांश की लसी हालत देखी थी, वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही। सार्थक ने गहरी सांस ली और एक बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपके कपड़ों पर खून लगा है, आपको चेंज कर लेना चाहिए। आर्यांश ने नामे सिर हिलाकर कहा, जब तक वो बाहर नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं करूँगा। सार्थक ने उसे समझाते हुए कहा, उन्हें कुछ नहीं होगा, नसें काटने से इंसान जल्दी से मरता नहीं है, आप तो उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए थे। सार्थक की बातों ने आर्यांश को और गिल्ट में डाल दिया था। उसी की वजह से दीवा ने अपने हाथ की नस काट ली थी। वो गुस्से में दीवार पर मुक्का मारने को हुआ, तभी सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप बेवजह खुद को परेशान कर रहे हैं, किस्मत पर भरोसा रखिए, मिस गोयनका को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर उनकी हालत संभाल लेंगे, सार्थक ने काफी समझदारी से कहा। सब मेरी ही गलती है, मैंने उसे मजबूर किया था, आर्यांश ने भारी आवाज में कहा। उसका पछतावा उस पर हावी होता जा रहा था।
आर्यांश ने दीवा को तकलीफ देने के हजारों तरीके सोच रखे थे, लेकिन आज उसने अपनी आंखों के सामने दीवा को मरते देखा तो उसका दिल टूटकर रह गया था। ऐसे लग रहा था जैसे दीवा की तकलीफ उसे महसूस हो रही हो। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। आपके इस तरह खुद के गुस्सा करने पर जो हुआ है वो बदला नहीं जा सकता, सार्थक बोला। आर्यांश ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, सार्थक, क्या मैं उसके साथ में ज्यादा रूढ़ हो जाता हूँ? आर्यांश कितना भी गुस्सा हो जाए पर हमेशा खुद को शांत दिखाता था। उसने कभी अपने इमोशंस अपने चेहरे से जाहिर नहीं किए थे, लेकिन उसे आज इस तरह बेचैन देखकर सार्थक ने कहा, मैंने कहा था ना, प्यार जहर होता है और ये आपको तकलीफ देता है, खुद को ही देख लीजिए। आर्यांश आगे कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने आर्यांश से कहा, मिस्टर कपूर, डॉक्टर गोयनका बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। आर्यांश के चेहरे पर कुछ राहत के भाव उभरे। वो बोला, कहाँ है वो? अभी ऑपरेशन थिएटर में ही है, हम रूम में शिफ्ट कर देंगे। हमें आज रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, सुबह रिपोर्ट्स नॉर्मल रही तो हम डिस्चार्ज भी दे देंगे, बस आपको उनका थोड़ा ध्यान रखना होगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। दीवा को तुरंत ही दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था जो उसी फ्लोर पर था। आर्यांश की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो दीवा का चेहरा देखे। वहीं शिफ्टिंग के बाद डॉक्टर के जाते ही सार्थक ने आर्यांश से कहा, सर आप घर चले जाइए, डॉक्टर गोयनका के साथ में यहाँ हूँ, उनका पूरा ध्यान रखूंगा। नहीं, तुम घर जाकर आराम करो और कल की मीटिंग्स भी तुम्हें ही देखनी होगी, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, आर्यांश ने जवाब दिया। सार्थक ने उसके आगे कोई सवाल नहीं किया और वहां से चला गया। वहीं अंदर दीवा को होश आ चुका था। दीवा के कानों में आर्यांश और सार्थक की बातें पड़ रही थी। उसने आंखें खोलकर एक नज़र अपनी कलाई की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। आर्यांश जब से उसकी जिंदगी में आया था वो जीने से थक चुकी थी। दीवा के दिल में यही ख्याल आया कि अगर वो हॉस्पिटल में ऐसे ही लेटी रहेगी तो उसे कभी आर्यांश के पास नहीं जाना पड़ेगा और थककर वो उसे इस अजीब रिश्ते से आज़ाद कर देगा। दीवा अपने ख्यालों में गुम थी तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। आर्यांश अंदर आया था। उसे देखते ही दीवा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा करते हुए आर्यांश ने नोटिस कर लिया था। उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई। क्या वो अब उससे इतनी नफरत करने लगी थी कि उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी? आर्यांश दीवा के सामने एक चेयर पर बैठ गया था।
दीवा ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रही थी लेकिन उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। उन दोनों के बीच एक अजीब खामोशी फैली हुई थी। अचानक आर्यांश ने दीवा से पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करने लगी हो? दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन कहा, तुमने मेरे साथ जो किया है ना आर्यांश, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने बस मुझे अपना खिलौना समझ रखा है, जब मन किया खुद खेल लिया वरना फेंक कर दूसरों के सामने कर दिया। दीवा के कोई जवाब नहीं देने पर आर्यांश बोला, मुझे पता तुम जाग रही हो। दीवा ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने महसूस किया आर्यांश ने उसकी चोट लगी हुई कलाई को पकड़ लिया था। दीवा ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। उसे नींद नहीं आ रही थी फिर भी वो सो जाना चाहती थी। दीवा के इस तरह कोई जवाब नहीं देने पर उसकी चोट लगी हुई कलाई को थोड़ा सा दूर से आर्यांश ने हल्के से दबाया तो वो दर्द से चिल्ला पड़ी, और कितनी तकलीफ दोगे तुम मुझे, छोड़ो दर्द हो रहा है, दीवा उस पर चिल्ला कर बोली। इस तरह तकलीफ में और तकलीफ देकर जगाने का काम आर्यांश जैसा इंसान ही कर सकता था। दीवा ने आंखें खोलकर उसे घूर कर देखा। उसका चेहरा देखकर दीवा को झटका सा लगा। आर्यांश की आंखों में कोई भाव नहीं था लेकिन उसके चेहरे पर दर्द था। उसकी आंखें आंसू रोकने की वजह से लाल हो रखी थीं। दीवा ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस तरह तकलीफ में देखकर आर्यांश की ऐसी हालत हो जाएगी। दीवा ने अपना थूक निकला तभी आर्यांश उसके चेहरे के बिल्कुल पास आया और सर्द आवाज में बोला, दीवा गोयनका, आगे से ऐसी कोई हरकत करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दूंगा, और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो अगली बार खुद को चोट पहुँचाने से पहले मेरी इस वार्निंग को याद रखना। दीवा को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। आर्यांश के चेहरे पर उसके लिए फिक्र के भाव थे जो कि पहली बार आए थे, और ऐसी हालत में भी वो उसे धमका रहा था। वो सच में एक शैतान था। तुम फिर से मेरी फैमिली का नाम लेकर मुझे धमकी देने लगे, दीवा ने कड़वाहट से कहा। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ धमकियां देता हूँ, आर्यांश ने भौंय उठाकर कहा। दीवा की नजरें नीची हो गई थीं। आर्यांश को चैलेंज करने का नतीजा वो देख चुकी थी। कुछ पल रुकने के बाद उसने हिम्मत करके आर्यांश की आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुम अपना वादा भी तोड़ते हो। तुमने कहा था कि 2 महीने पूरे होते ही तुम मुझे आज़ाद कर दोगे, अब जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है तो तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। दीवा को लगा आर्यांश उससे वापस बहस करेगा, लेकिन तभी आर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है चली जाना, कर दूंगा आज़ाद। दीवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। आर्यांश उसे रोकने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था और उसके एक कदम के चलते डर के मारे दीवा को आज़ाद कर दिया था। दीवा ने एक नज़र अपनी चोट की तरफ देखा। आज उसने बहुत कुछ सहन किया था लेकिन आर्यांश ने उसे आज़ाद करने का कहा तो उसे लगा कि उसका ये दर्द सहना काम आया। दीवा मन ही मन राहत महसूस कर रही थी लेकिन ये राहत थोड़ी ही देर की थी। अगले ही पल आर्यांश उसके चेहरे पर झुका और उसके होंठों को कैप्चर कर लिया था। वो इस वक्त कितना घबराया हुआ और बेचैन था ये उसके किस में नजर आ रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। तो क्या सच में आर्यांश दीवा को जाने देगा?